नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। देहरादून में आज से शुरू होगा विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन। वैश्विक नेता और विशेषज्ञ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर करेंगे गहन मंथन। राज्य में माधो सिंह भंडारी सहकारी सामूहिक खेती योजना से 1235 एकड़ भूमि फिर से उपजाऊ। 24 समितियों के 2000 किसान हो रहे लाभान्वित। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से दिव्यांगजनों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी से निपटने के लिए सख्त कानून लाने पर विचार करने को कहा। और नाबालिगों में नशा रोकथाम के लिए देहरादून में विशेष रिहैबिलिटेशन केंद्र शुरू किया जाएगा। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह। और अब समाचार विस्तार से। देहरादून में आज से विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन में वैश्विक नेता और विशेषज्ञ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर गहन मंथन करेंगे। यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने बताया कि 30 नवंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में आज उद्घाटन सत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि होंगे।
सम्मेलन में उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा प्रसार सम्मान, भागीरथ पुरस्कार और युवा महिला वैज्ञानिक पुरस्कार जैसे नए सम्मान शुरू किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य विज्ञान संचार, आपदा प्रबंधन, जलवायु और महिला वैज्ञानिक नवाचार को प्रोत्साहित करना है। इसी अवसर पर राज्य स्तरीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीमियर लीग 2025 भी आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी 13 जिलों की टीमें क्विज, नवाचार प्रदर्शनी, आपदा प्रतिक्रिया और जलवायु समाधान प्रतियोगिताओं में भाग लेंगी। सम्मेलन के दौरान 20 से अधिक कार्यशालाएं, संवाद सत्र और विशेष कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस सम्मेलन से निकलने वाले निष्कर्ष, सुझाव और रणनीतिक समाधान न केवल उत्तराखंड बल्कि सभी हिमालयी राज्यों के लिए मार्गदर्शक, उपयोगी और दूरगामी प्रभाव वाले सिद्ध होंगे।
माधो सिंह भंडारी सहकारी सामूहिक खेती योजना से प्रदेश के बंजर खेत फिर से आबाद हो रहे हैं और किसानों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। सहकारिता विभाग की इस योजना के तहत वर्तमान में 1235 एकड़ भूमि पर सामूहिक खेती की जा रही है और प्रदेश भर की 24 सहकारी समितियों से जुड़े करीब 2400 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि यह योजना ग्रामीण विकास और कृषि पुनर्जागरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल अनुपयोगी भूमि उपजाऊ बन रही है बल्कि किसान संगठित होकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में इस मॉडल का और विस्तार किया जाएगा ताकि पलायन प्रभावित क्षेत्रों में कृषि आधारित रोजगार बढ़े और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो। सरकार ने प्रत्येक ब्लॉक में बंजर खेतों की पहचान कर 4750 एकड़ जमीन को आबाद करने का लक्ष्य रखा है। चयनित 70 क्लस्टरों में से 24 में सामूहिक खेती शुरू हो चुकी है, जहां स्थानीय संसाधनों और आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में मिलेट्स, बेमौसमी सब्जियां, दालें, फल, औषधीय और सुगंधित पौधों के साथ व्यावसायिक फसलें और चारा उत्पादन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड निवेश और नवाचार का नया केंद्र बन रहा है। देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को वैश्विक निवेशक सम्मेलन में 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्राप्त हुए हैं, जिनमें से लगभग 1 लाख करोड़ के प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। केदारखंड और मानसखंड क्षेत्र में सौंदर्यकरण, हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर और यमुना तीर्थ स्थल के पुनर्द्वार जैसे कार्य जारी हैं। शीतकालीन यात्रा की पहल से 12 महीने पर्यटन को बढ़ावा मिला है और धार्मिक, साहसिक और वेलनेस पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड की पहचान और मजबूत हुई है। श्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड के विकास में जनता की सहभागिता महत्वपूर्ण है और सामूहिक प्रयासों से राज्य नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ेगा। नोएडा में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में आयोजित ऊपरी यमुना नदी बोर्ड की 9वीं रिव्यू कमेटी की बैठक में राज्य के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार यमुना जल आवंटित किए जाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई की कमी के कारण फल, सब्जी और अन्य नकदी फसलों की उत्पादकता प्रभावित होती है, जिससे पलायन बढ़ता है। ऐसे में उत्तराखंड को जल उपलब्धता के अनुपात में हिस्सा मिलना जरूरी है। उन्होंने बताया कि 1994 के समझौते के अनुसार उत्तर प्रदेश को 4.032 बिलियन क्यूबिक मीटर जल आवंटित किया गया था। वर्ष 2000 में उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद भी जल बंटवारे पर सहमति नहीं बन सकी और केंद्र के हस्तक्षेप के बाद राज्य को मांग के करीब 32% कम पानी आवंटित हुआ। 2024 में हुई पिछली बैठक में भी उत्तराखंड को 0.311 बिलियन क्यूबिक मीटर जल मिला था, जबकि यह राज्य की मांग से काफी कम है।
ये सुधार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध है।
सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से दिव्यांगजनों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी से निपटने के लिए कड़े कानून बनाने पर विचार करने को कहा है। न्यायालय ने आज केंद्र से दिव्यांगजनों और दुर्लभ आनुवंशिक विकारों से ग्रस्त व्यक्तियों का उपहास करने वाली अपमानजनक टिप्पणियों को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तर्ज पर दंडनीय अपराध बनाने के लिए कानून बनाने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अभद्र आपत्तिजनक और अवैध सामग्री को नियंत्रित करने के लिए एक तटस्थ स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय की आवश्यकता है। नाबालिकों में बढ़ती नशे की समस्या को देखते हुए राजधानी देहरादून में बच्चों के लिए विशेष रिहैबिलिटेशन केंद्र शुरू किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग को शीघ्र इसकी गाइडलाइन के साथ प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस केंद्र का उद्देश्य कम उम्र में नशे की गिरफ्त में आ चुके बच्चों को मुख्यधारा में वापस लाना और उनके भविष्य को सुरक्षित करना है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार में जिला स्तरीय नारकोटिक्स समन्वय समिति की बैठक में राजधानी में नशे के खिलाफ चल रही कार्यवाही की समीक्षा में यह जानकारी दी। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी मेडिकल स्टोर्स में 10 दिनों के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो मेडिकल स्टोर्स इन निर्देशों का पालन नहीं करेंगे उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। दवा फैक्ट्रियों और मेडिकल स्टोर्स की सघन जांच भी जारी रखने को कहा गया है। उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यापक ड्रग्स टेस्टिंग कराने और प्रत्येक विद्यालय व कॉलेज में एंटी ड्रग्स कमेटी को सक्रिय करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री बंसल ने सभी स्कूलों सार्वजनिक स्थानों और कार्यालयों में मानस हेल्पलाइन 1933 और डिस्ट्रिक्ट डी एडिक्शन सेंटर हेल्पलाइन 9625777399 के पोस्टर लगाने को कहा ताकि नशे से जुड़े मामलों की तुरंत जानकारी मिल सके। भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के बाद आदि गुरु जगतगुरु शंकराचार्य की गद्दी सेना के बैंड के साथ कल ज्योतिर्मठ स्थित नरसिंह मंदिर पहुंची। इसके साथ भगवान बद्रीनाथ का खजाना और गरुड़ महाराज की डोली भी ज्योतिर्मठ लाई गई। बद्रीनाथ के कपाट 25 नवंबर को बंद हुए थे। इसके बाद 26 नवंबर को कुबेर उद्धव गरुड़ महाराज और शंकराचार्य की गद्दी बद्रीनाथ से प्रस्थान कर योगधान बद्री पांडुकेश्वर पहुंची, जहां कुबेर और उद्धव की स्थापना हुई। बुधवार सुबह शंकराचार्य की गद्दी और गरुड़ महाराज की डोली ज्योतिर्मठ पहुंची, जहां नरसिंह भगवान और नवदुर्गा की पूजा के बाद गद्दी की स्थापना की गई और खजाना भगवान नरसिंह को सौंपा गया। गद्दी के ज्योतिर्मठ पहुंचने के साथ ही शीतकालीन यात्रा प्रारंभ हो गई है। हरिद्वार को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए चल रहा स्वच्छता अभियान 9वें दिन भी जारी रहा। अभियान के तहत शहरी क्षेत्रों से लेकर गांवों और कस्बों तक सफाई कार्य किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर विशेष अभियान चलाया गया। बीएचईएल क्षेत्र में चिन्मय डिग्री कॉलेज से सेक्टर 6 तक सफाई की गई। मंगलौर नगरपालिका क्षेत्र खानपुर की ग्राम पंचायतों मंडावर मंगलौर हाईवे और रुड़की हरिद्वार रोड पर भी सफाई अभियान चलाया गया। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं को खेल विभाग में ही किया जाएगा सेवायोजित, यह खबर सभी समाचार पत्रों की सुर्खियों में है। दैनिक जागरण लिखता है प्रदेश में पदक विजेताओं को अब खेल विभाग में ही मिलेगी नौकरी। वहीं हिंदुस्तान समाचार पत्र का शीर्षक है पदक विजेताओं के लिए 500 पद। एक अन्य खबर पर अमर उजाला लिखता है उत्तराखंड में समस्त बार एसोसिएशन की चुनाव प्रक्रिया पर रोक, हाईकोर्ट बार ने काउंसिल की रोक को ठुकराया। उत्तराखंड में अब सिंगल लेन नहीं रहेगी कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग, इस शीर्षक के साथ दैनिक जागरण की खबर है राष्ट्रीय राजमार्गों को डबल लेन बनाने की प्रक्रिया तेज, डीपीआर तैयार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देहरादून में आज से शुरू होगा विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन। वैश्विक नेता और विशेषज्ञ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर करेंगे गहन मंथन। राज्य में माधो सिंह भंडारी सहकारी सामूहिक खेती योजना से 1235 एकड़ भूमि फिर से उपजाऊ, 24 समितियों के 2000 किसान हो रहे लाभान्वित। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से दिव्यांगजनों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी से निपटने के लिए सख्त कानून लाने पर विचार करने को कहा और नाबालिगों में नशा रोकथाम के लिए देहरादून में विशेष रिहैबिलिटेशन केंद्र शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।